पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबतन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका संत राधा संत कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभांसुते प्रणमामि। हा देवी काकू भर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भुवि दंडवत बुद भटारति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य तिष्ठा हरिते तव गणे गणन अंगश्यामलिं शताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्दञ्जागुदरोचितं विदधतङ्गपत्सम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं शिथिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं नायीं दामो याविहीना अपराधलक्ष्यै चित्वाच्च कामादितरम् कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपि सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्न माम च। लाइक दैट भगवत सामने कल तक हम लोगों ने कुछ कुछ वैष्णव तत्व वैष्णवों की महिमा इत्यादि के संबंध में कुछ कुछ बतलाया। आज हम लोग बृहद भगवतामृत से एक एक श्लोक का सनातन गोस्वामी के पिता हम पाठ कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृत के अंत में श्रीमद्भागवत और दूसरे भक्ति ग्रंथों से कुछ श्लोकों का समाहरण किया है और उसकी अद्भुत रसयुक्त टीका करते हैं। हम इसमें से कुछ पहले कर चुके हैं, आज उसके बाद से फिर आरंभ कर। धन्य आय अद्य धरणी तृण विरुत्त द्रुधस्त पाद स्पर्शो दुर्मलता करजाभिमृष्टा नद्दो अद्रय खगमृगा सदयावलोकय गो गोप्यो अंतरेण भुज अपि जत्सिहास्ति। साधारण इसका अर्थ यह है कि कृष्ण का बाल्यपन अब कुछ बीत चुका है, पौगंड में भी अब कुछ पौगंड से भी ऊपर उठकर युग वयसंधि में आ रहे, अब किशोर थोड़ा थोड़ा किशोरावस्था उनकी आ रही है। उस समय में विभिन्न ऋतुओं में अपने सखाओं और गायों को लेकर वृंदावन के विशेष विशेष स्थलों में गोचारण के लिए जा रहे हैं। कभी भांडीर वन में, कभी कामे वन में, कभी खेलन वन में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, इस तरह से कभी मधुबन में, ताल वन, कुमुद वन में प्रवेश कर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। उस समय में एक बार कृष्ण और बलदेव सखाओं को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किया। कृष्ण वहां की प्राकृतिक वहां का सौंदर्य देखकर बड़े उत्फुल्ल और आनंदित हुए। वो वृंदावन की शोभा का वर्णन करने लगे और किस तरह से वर्णन करने लगे बलदेव जी को देख करके मानो वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं किंतु बलदेव जी को के लिए कर रहे हैं। ये वृंदावन की शोभा केवल तुम्हारी अब तुम्हारे अभिनंदन के लिए ये है, अपना नहीं नाम पुकार रहे हैं। अपने बहाने बलदेव जी के बहाने मानो ये उनसे बतला रहे हैं। देखो तो आज वृंदावन कैसा सुहावना लग रहा है। अभी शरद ऋतु का वर्णन किया था, शरद ऋतु में लताएं बढ़ जाती हैं, उसमें फूल आ जाते हैं, बड़ी सुंदर नदियां भी स्वच्छ हो जाती हैं, सरोवर का पानी भी स्वच्छ हो जाता है, मैला गंदा नहीं रहता, पशु पक्षी भी उत्फुल्ल होकर के उठते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, चंद्र की शोभा भी बड़ी निराली होती है क्योंकि धूल इत्यादि नहीं रहती, फूले का सकल महिषाए, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, याद है, वर्षा ऋतु विगत हो गई, काश तीर्थों का कहें सफेद सफेद ये सब छा गए हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण जी वहां पर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, यहां पर बलदेव जी को कह रहे हैं, बड़ी सुंदर दृश्य हो गया, लताओं में फूल भरा है, पशु पक्षी चहकने लगे, न अधिक ठंडा न अधिक गर्मी। बलदेव जी कहते हैं देखो तो ये पेड़ों की शोभा, आज पेड़ हरियाले हो रहे हैं, इनमें फल फूल लगे हुए हैं, मानो बसंत ऋतु आ गई। के उपचार के लिए होता है। देखो मनुष्य से तुलना करो और जीवों से तुलना करो, सभी लोग कुछ स्वार्थी रहते हैं, विशेष करके मनुष्य। जो मनुष्य पेड़ों की भांति दूसरों के लिए जीवता रहता है वह अजर अमर, वो वैष्णव है। वैष्णव के बिना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैष्णव लोग कृष्ण के लिए ही प्राण धारण करते हैं। जब कृष्ण के लिए प्राण धारण करते हैं तो सबके लिए हो जाता है, क्योंकि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि। इसलिए यदि किसी को जीवित रहना है तो पेड़ों से सीखें, ये कैसे दूसरों के लिए उपकार किया जा सके। हम लोगों को भी, साधक को भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए जी, दूसरों के लिए उपकार। सबसे बड़ा उपकार क्या है? संसार से में भगवान के विपरीत रहकर, विमुख रह करके जो लोग अपने सुखों में तन्मय हैं, भगवान क्या है, भक्त क्या है, ये कुछ नहीं जानते, भक्ति क्या है, उनकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ देना, ये सबसे बड़ी दया है। इसे बढ़कर के और कोई दया नहीं है। उनका अंतर और बाहर दोनों एक होता है वैष्णव। तो इसको पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। आज देखो गोवर्धन जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, हरियाली चारों तरफ में छाई, फूलों से सुगंधित हो रहा है, वायु भी सुगंधित चल रही है, शीतलमंद सुगंध चल रही है बयार। कहते हैं कि धन्य यम अद्य धरणी तृण बिरु तत् तत् इयम 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 माने क्या? धरणी, आज ये धरणी धन्य है। धन्य माने किसको कहते हैं? धन से धन्य, जो धन से परिपूर्ण हो उसको कहते हैं धन। संसार में बहुत प्रकार के धन हैं, किंतु सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति धन, प्रेम। कृष्ण के प्रति यदि है प्रेम तो ये बड़ा सबसे धन है। धर्म क्या है? धर्म ही धन है। और सब प्रकार के धर्मों में तो वही पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्त है। अधोक्त कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वही सबसे बड़ा धर्म, मनुष्य मात्र के लिए, पशु पक्षी सबके लिए, जीव मात्र के लिए यही परम धर्म। जिसको धर्म रूपी धन नहीं है, भक्ति रूपी धन नहीं है, तो वो पशुओं से भी गए बीते हैं। आज ये पृथ्वी आज ही धन्य है। और तृण विरुध इत्यादि ये सभी धन्य है, किस लिए? उसी के लिए बात ला रहे हैं। धरणी आज धन्य, आज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं पाद स्पर्शो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। आज धन धरणी धन्य है और इसके तृण गुल्म लताएं ये सभी धन्य है, क्योंकि कृष्ण का ये पदों को स्पर्श किया है, चरण कमलों का स्पर्श। द्रुमलता करज आभिमिष्टा, धरणी पर अपने चरण रखते हैं, इसलिए धरणी के धरणी स्वयं और उसके ऊपर रहने वाले जो तीन छोटे छोटे हैं विरूद हैं वो भी धन्य है। कभी कृष्ण का चरण कमल उनसे भी लग जाता है। द्रुमलता करज आभिमिष्टा, द्रुम जो हैं बड़े बड़े और उस पर चढ़ने वाली जो लताएं हैं करज आभिमिष्टा, उनके हाथों को स्पर्श करके आई है। पैर नहीं लिखा क्योंकि बड़े बड़े ऊंचों को पैर स्पर्श करने का मौका कम मिलता है, इसलिए कृष्ण ने आज उनको अपने हाथों से स्पर्श किया। नद्यो अद्रय नद्य अद्रय खग मृगा, इनको कृष्ण के चरणों से भी स्पर्श नहीं और हाथों से भी इनका स्पर्श नहीं। नदी अद्र अद्री माने पर्वत, खग पक्षी, मृगा मृगा माने जितने हैं गाय और पशु जितने हैं सभी उसमें मृगा में आ गए। इनको क्या करते हैं? सदयावलोकई, इनको हाथों से पैरों से स्पर्श नहीं कर सकते, इनको दया दया माने प्रेम, प्रेम से करुणा पूर्वक नेत्रों से उनके तरफ में देखते हैं, अब आंखों से उनका स्पर्श करते हैं। जिनका पैर से नहीं हुआ उनको हाथ से, जिनका हाथ से भी नहीं हुआ उनको नेत्रों से स्पर्श करते हैं। बीच में कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके फिर कहते हैं गो गोप्यो अंतरेण भुजयो अपि जत विहारी, और गोप्यः गोपियां अंतरेण भुजयो, किसी को पद से स्पर्श किया, किसी को हाथ से स्पर्श किया, किसी को अपने नैनों से स्पर्श किया, और इन गोपियों को अपने दोनों हाथों के अंदर में, भुजाओं के अंदर में क्या है वस्त्र, उनके वस्त्र से स्पर्श, वो जो अपनी अंतरेण जप तिहार, जिसकी तिहार लालसा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं किंतु आज तक नहीं पाई उन गोपियों को भी, इसलिए आज ये पृथ्वी चल में आए, इसलिए साधारण रूप में ये इसका अनुवाद सनातन गोस्वामी जी अब इसकी टीका कर रहे हैं। अब्द शब्द का प्रयोग क्यों किया, भगवान के भक्त लोग और भगवान के सब अवतार कोई भी हो, चाहे कुकर हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, परा हो, नृसिंह हो, परशुराम हो, राम हो, कल्कि हो, बलदेव जी हो, बुद्ध देव जी हैं, कपिल हैं, इत्यादि हैं, वो जन्म लेकर के आविर्भूत होकर के पृथ्वी का जरूर स्पर्श करते हैं। तो पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा बराह, चौथा नृसिंह, इसके बाद में पांचवा बामन। बामन भी पृथ्वी को मापा ना, पृथ्वी पर पैर रख करके तीन जग चले, तीन पैरों में सबको माप लिया, किंतु पैर उनका कहाँ होगा, पृथ्वी पर ना, पृथ्वी पर पैर रख करके माप लिया, और फिर उनको भी अपने माप लिया बलि को, इस तरह से पृथ्वी में पैर रख करके किया। विशेष करके बड़ा परिरंभरेण, बड़ा देवी जी पृथ्वी रसातल में चली गई हैं, प्रलय की बाढ़ में डूब गई हैं, और ब्रह्मा जी के नाशिका केंद्र से निकलकर विराट रूप धारण करके छलांग लगाई, आगे पैर दोनों और उसके बीच में मस्तक आगे, ऐसे जब कूदते हैं, ऐसे आजकल गोताखोर लोग भी आजकल ओलंपिक में भी ऐसे ही पहले हाथ से लेकर के चलते हैं, कूदते हैं ऊपर से, ऐसे बराहदी जी अपने सुथुन को, मुख को अपने पैरों के लिए लेकर के ऊपर से एकदम गोलाकार आकूद करके एकदम कहाँ चले गए, सुन करके जहाँ पर रसातल में पृथ्वी थी, और उनको उद्धार करके ले, कैसे उद्धार करके ले आए, कैसे उद्धार किया, मानो अपने मुख के निकट पृथ्वी देवी को, लक्ष्मी पृथ्वी ये भू देवी उनको रख करके ले आए, बड़े प्यार के साथ आए और उसके स्थान पर रख, यहाँ पर हाथों से जरूर स्पर्श किया होगा और लेकर के पृथ्वी ने उनको प्रणाम भी किया होगा, और लेकर के अपने दांतों पर रख करके लेकर के उनकी छुरी पर रख दिया। नरकासुर उसी समय उसका जन्म हुआ, परिरंभने उनके पसीने से, पसीने से पृथ्वी पर वो नरकासुर की पत्नी। तो बरादेव जी भी उनको स्पर्श किया, अपने चरणों से भी स्पर्श किया, हाथों से भी स्पर्श किया, यहाँ तक कि अपने मुखारबिंद से भी उनको स्पर्श किया, मानव चुंबन कर रहे हो, किंतु उस समय में वो धन्य नहीं हुई। धन्य कब हुई, आज धन्य हुई, इसलिए कह रहे हैं ये सब चीजें इसके बाद में कह रहे हैं अनादि काल से पृथ्वी चली आ रही है और भगवान की विभूतियां जैसे कौन विभूति शंकर जी विभूति हैं, जितने तेजस्वी लोग हैं वो सब भगवान की विभूतियां हैं, अग्नि भी विभूति है, इंद्र भी विभूति है, ये सब तेजस्वी विभूतियां हैं और उनके भक्त लोग भी भगवान के अवतार भी पृथ्वी पर आए। बराजी भी उनका स्पर्श किया, पृथ्वी भी उसमें धन्य हो गई। अब तुलना मूलक दृष्टि से कर रहे हैं किंतु आज जैसे धन्य हुई पहले धन्य नहीं हुई। धन्य माने उसकी जैसे मैंने पहले व्याख्या किया, धन से धन्य या धन, जिसके पास में धन है वह धन्य है। धन बहुत प्रकार का, जिसमें धर्म अथवा भक्ति धर्म, और भक्ति धर्म में प्रेम धर्म जिसको है वो सर्वोत्तम धनी है। प्रेम धन बिना दस्त दरिद्र बिना, जिसको प्रेम नहीं है भगवान के चरणों में उनका जीवन धन्य है। तो किसका प्रेम है, उत्तम अधिकारी होंगे तो उनको प्रेम है। मध्यम अधिकारी कुछ खोज पाता है किंतु असल में ये होता है उत्तम अधिकारी को, इसके पहले नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं जिसको प्रेमा भक्ति है वो धन्य है। भक्ति ही धर्म है, धर्म इष्टम धनम पुंसाम धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त। जिसको भगवान की भक्ति है, ये भागवत का है, जिसको भक्ति है वही परम धन्य है। आज जिसको भक्ति नहीं है वो पशु के समान है, धर्म नहीं ना पशु भी समान है। विशेष करके प्रेम भक्ति वाले व्यक्ति ही धन्य है। क्यों धन्य है, जिनको प्रेम नहीं है वो कृष्ण को नहीं समझ सकते, नहीं समझे। विशेष करके प्रेम में भी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होगा तो कृष्ण को अधिकतर समझ सकते। ऐसे लोग धन्य है जो कृष्ण के इस प्रेम को अनुराग को समझ करके कृष्ण की के प्रति प्रेमा भक्ति उनकी सेवा करते हैं। आज ही धन्य किस लिए, जितने भगवान के अवतार हैं समस्त प्रकार के अवतारों में कृष्ण सबके अवतारी हैं और कृष्ण का जो रूप है वह अपना असली रूप मूल रूप क्या है, कैसो रूप। इस कृष्ण के किशोर रूप विशेष करके श्रीमती राधिका के साथ में जो कृष्ण का किशोर रूप है इसकी आराधना करने वाले भक्त भी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। मालूम होता है कि आज राधा कृष्ण की उपासना करने वाली ये पृथ्वी जी आज धन्य हुई है, पहले इनको प्रेमा भक्ति उस रूप में नहीं थी, आज हुई है। कैसे, गोवर्धन के निकट, गोवर्धन क्या है, पृथ्वी के ही अंग हैं, बल्कि पृथ्वी के वस्तस्थल हैं पृथ्वी देवी के। राधा कुंड श्याम कुंड पृथ्वी के नेत्र हैं। आज उस पहाड़ गोवर्धन पर्वत के ऊपर में कृष्ण अपने चरणों को रख रहे हैं। गोवर्धन के कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में कृष्ण विश्राम करते हैं, सखाओं के साथ में पीड़ा करते हैं, गोपालों के साथ में, गायों के साथ में पीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ में पीड़ा करते हैं। इसलिए आज ही ये पृथ्वी को ये अवसर मिला, इसके पहले कहीं नहीं मिला। कुंज में प्रवेश करना माने क्या, पृथ्वी के ऊपर ही तो है, गोवर्धन पर्वत है, ये पृथ्वी के ही अंग है। राधा कुंड श्याम कुंड में उनकी जितनी पीड़ाएं होती हैं वो पृथ्वी पर ही पीड़ाएं हैं। इसलिए आज ही मानो ये पृथ्वी जी ये धन्य हुई है क्योंकि आज उनको प्रेमा भक्ति। यदि कहो रामचंद्र तो आए थे, उन्होंने पृथ्वी पर अपना चरण धारण किया और उस पर लीलाएं की, थी वो ठीक है, दंडकारण्य में गए अपने पिता की प्रतिज्ञा रखने के लिए, इस राज्य को छोड़ दिया। पिता और लक्ष्मण जी के साथ में वन में प्रवेश, खड़ाऊन और जूते नहीं लिए, छत्र छत्री नहीं ली, खाली पैर चले। वहां से गंगा को पार करके केवट ने उनको पहले ही चरण धो दिया, कठौती में पानी भर करके लाया। ये कहीं ये कठौती यदि यदि नारी बन गई तो नौका जरूर बन जाएगी, इसलिए कठौती में हम परीक्षा कर लेंगे, कठौती नारी बनती रहेगी, इसलिए कठौती में पानी भर करके दिया और मलमल करके चरण धोया, कोई सिराने नहीं दिया और चरण धो करके सिर नाव में बैठाया। उसके बाद में चित्रकूट आए, चित्रकूट दिन में कुछ दिन रहे, इसके बाद दंडकारण्य में गए। वहां जाने पर सीताजी का अपहरण हो गया, अब वहां से दुखी होकर के चल गए, लक्ष्मण जी उनके साथ में हाथ पीछे करते हुए विलाप कर रहे थे। पहले तो दुखी थे, किस लिए? राज्य इत्यादि सब छोड़ करके वनवास के रूप में सीता जी को चरण खाली पैर चलते हुए देख रहे हैं, उनको दुख होगा कि नहीं? दुख पर अपने नहीं तो चले, और सीता जी उनके साथ में चल रही हैं, और कभी संकट चूकते होंगे, पत्थर चूकते होंगे, थक जाती होंगी तो क्या करेंगे, दुखी नहीं होंगी? ऊपर से तो प्रेम दिखलाते हैं किंतु दुखी रहेंगे। और दंडकारण्य में सीता जी की चोरी होने के बाद में किष्किंधा आने तक, और किष्किंधा के बाद में सारी सेना के साथ में समुद्र को पार कर लंका में गए और इतना युद्ध किया खाली पैर किया, और उसके बाद में खाली पैर नहीं रहा, इसके बाद में क्या विमान पर चढ़ करके अयोध्या आकर के राज सिंहासन में लिया जूती पहन, अब जब चलेंगे तो जूती पहनकर। तो इसमें रामचंद्र जी के चरणों का पृथ्वी ने स्पर्श पाया, किंतु पृथ्वी जी जरा दुखी हुई। आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी होकर के जा रहे हैं, सौभाग्य तो उनका है जो रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श मिला, बात तो ठीक है, किंतु कुछ पृथ्वी जी दुखी हो रही होंगी। आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी, और उस राम के वराह देव के और समस्त अवतारों के मूल अवतारी स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर, वो भी किशोर अवस्था में, जिस समय में अभिचार कर रहे हैं और उनके चरणों में कुमकुम लगा हो, और कुमकुम जब सवेरे जब वो घर में लौट रहे हो, उस कुमकुम के साथ में चरणों का स्पर्श पृथ्वी ने किया, उनको रोमांच हुआ। कैसे रोमांच हुआ? रोमांच आया मानो सब नई नई कोपलें निकल गई था, ये पृथ्वी का रोमांच, और हंसने मुस्कुराने लगी। मुस्कुराया कैसे? फूल खिले और आंखों से आंसू बहने लगे, माने नदियों से झरनों से आज खुशी ठंडी हो गई। आज कृष्ण का वह चरण कमल जो कुमकुम से भरा हुआ, ये कुमकुम कहां से आया? गोपियों के अंगों से, और उसके द्वारा ये इस पर पृथ्वी पर लगाया। पृथ्वी कहीं आज हमारा किशोर कृष्ण गोपियों के साथ में संयुक्त कुमकुम के साथ आज पृथ्वी पर अपना चरण कमल रखा, कैसा धन्य हुआ होगा पृथ्वी। आज तक ऐसा कभी उसको सौभाग्य नहीं हुआ, इसलिए धन्य धन्य नियम अद्य धरणी तृण तक। और कह रहे हैं कृष्ण का अपना रूप किशोर रूप है, कृष्ण का रूप जो है अपना क्या है? नव किशोर, नटवर, गोपवेश, अब यही रूप उनका मूल है, किंतु यह होने पर भी उसमें बाल्यावस्था सी किसी को दिखती है कुछ दिनों के, उसमें पौगंड अवस्था दिखती है और उसमें कुछ युवावस्था भी दिखती है, किंतु मूल रूप कृष्ण का भक्त लोग इसी रूप की आराधना करते हैं और कृष्ण नित्य रूप में इसी रूप में रहते हैं। आज पृथ्वी देवी को स्वयं भगवान सबके अवतारी जो कृष्ण हैं, वो भी परम रसिक हैं, ऐसे रस के समुद्र हैं, ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करने का, वो भी गोपियों के अंगों के कुमकुम के साथ में ये मिला, ये सौभाग्य आज तक पृथ्वी को नहीं, इसलिए मानो आज आज ही पृथ्वी ये, वो भी कैसा, अथवा अथवा कह रहे हैं तीर्ण विरुद्ध तक पाद स्पर्शो, इनके लिए पाद स्पर्श बतलाया, क्योंकि छोटे छोटे इस पर चल सकते हैं, कृष्ण गोचारण करने के समय में चल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि कृष्ण के चरण को स्पर्श करने की अपेक्षा गोपियाँ और उनमें जो सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधिका चंद्रावली इत्यादि हैं, ललिता विकास, इनके चरणों के स्पर्श से और भी धन्य है, अन्य अवतारों में ये सब संभव है। क्यों, जिनके चरणों का स्पर्श स्वयं कृष्ण करते हैं और क्या कहते हैं, मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पौल, कृष्ण स्वयं जिनके चरण के स्पर्श से तो और सब धन्य हो रहे हैं और कृष्ण स्वयं जिनके चरणों को स्पर्श करके धन्य हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं पद स्पर्शो, पृथ्वी तो उनके चरण के स्पर्श से हो रही है और कृष्ण स्वयं किसके स्पर्श से हो रहे हैं, गोपियों के चरण स्पर्श से अपने को धन्य मानते हैं। वो क्या है, जस्या कदापि वसनोंचलोके नलोत्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जो गंद दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वानुतु, कृष्ण धन्य हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं, किस लिए, राधिका जी का स्पर्श दूर रहे, राधिका जी के अंचल वसन का जो अंचल है उसमें हवा स्पर्श करके धन्याति धन्य हो गई, हवा उनके उनका गंध का स्पर्श नहीं, उनके वसन के अंचल का गंध जो कि राधा जी के अंगों से स्पर्श होने से वो सुगंधित हो रहा है, उसको गंध को कौन लेकर के वो कृतार्थ हो गया और कृतार्थ के फिर आगे बढ़ा, कृष्ण को स्पर्श किया राधा कुंड का पानी स्पर्श करते हुए और भी सुशीतल और सुगंधित हो, और कृष्ण के अंगों में लगा धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने, अपने को कृतार्थ, आज हमारा जीवन राधिका जी और गोपियां कैसी हैं, इसलिए वो करें आज कृष्ण स्वयं उनका पद स्पर्श करते हैं, अपनी मुकुट मुकुट माने वो मौन पंख और अपनी बंसी उनके चरणों में रख रहे हैं, आज से ऐसा नहीं करूंगा, आज तो हमें क्षमा कर दो, हम अपना सीट मारेंगे, जिसको जयदेव जी नहीं लिख सके कोई भी नहीं लिख सका, जिसको रूप सनातन इत्यादि लिख सकते हैं दूसरा नहीं लिख सकते, इसलिए पद स्पर्श का ये सनातन गोस्वामी ने नया अर्थ दिया, पृथ्वी तो धन्य हो रही है किंतु आज जिनके चरणों को धन स्पर्श करके कृष्ण धन्य मान रहे हैं उनके भी चरण को ये स्पर्श कर रही है, ये इसके अंतर्भाव्य इसका अर्थ है। गुरुमलता सरजा में मृषा, और पृथ्वी तो धन्य है, आज पृथ्वी के ध्रुम कौन सा ध्रुम इत्यादि, जैसे श्रृंगार वट, भांडी वट, बंसी वट, कौन जिस पर चढ़ करके कदम बटे इत्यादि वृक्ष कैसे हैं, वृंदावन के पेड़ ऐसे ही है सब वृक्ष, बचपन में पौगंड अवस्था में कृष्ण पेड़ों पर भी चढ़ते थे अपने सखाओं के साथ और तरह तरह की क्रीड़ाएं करते, भोजन भी उसी पेड़ों की डालियों में लटका देते, जिसके जिसकी डालियां कृष्ण के भोजन को वहन करती हैं, जिस पर लटकाते हैं, जिसकी छाया में कृष्ण खेलते हों, सखाओं के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, डालियों पर चढ़कर यमुना को डाली के ऊपर से ही पार कर जाते हैं, फूल से दौड़ते हुए इस तरह से जो क्रीड़ाएं करते हैं, जिस क्रीड़ा के अंदर में भांडी वंश के अंदर में नंद बाबा जब कृष्ण को लेकर के गोदी में जा रहे हैं और उनकी गोदी से कृष्ण राधा जी की गोदी में आ रहे हैं, वन बड़ा सुहावना, मेघ आकाश में गर्जन कर रहे हों, काले काले मेघ, उसकी घटाओं से वो वन भी काला हो गया और काले पेड़ और काले पत्तियां और भी काला हो गया। उसमें राधा जी कृष्ण को लेकर के अंतरहित होकर के भांडी वन में पत्ती, वहां पर उनके साथ में उनका विवाह हुआ होगा, ब्रह्मा जी विवाह, वहीं पर बंसी बट है जहाँ पर किराज था, वहीं पर वेणु कूप है जिसे गोपियों के प्यास लगने पर उनकी प्यास की जाएगी, अथवा अपवित्र कृष्ण होने पर गोपियों के कन्ने से वेणु से सब तीर्थों का आवाहन करके और उसमें स्नान किया, ये सब लीलाएं जो कहाँ हुई है सब पेड़ों के अंदर, सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, किंतु पेड़ों जब किशोर अवस्था में आ गए अब पेड़ पर नहीं जाते, अब अभी बालपन में गोपियों के वस्त्रों को लेकर के चोरी, बालपन की ये बात है, बालपन या पौगंड कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए, बच्चे सब पेड़ पर चढ़ते हैं, आप लोग चढ़ेंगे, आप लोग तो युवा अवस्था जरूरत है चढ़ने या यही चढ़ सकेंगे, बाल्यावस्था में कुछ चढ़ते इसलिए कह रहे हैं दुर्मलता कर जाता, बड़े पेड़ों पर जिस पर चढ़ नहीं सकते, आज पृथ्वी के ये धन ये हैं ध्रुम और लताएं, पेड़ और लताएं, इसलिए कह रहे हैं यदि किसी मैया के सामने बाप के सामने उसके बेटे की प्रशंसा की जाए, वाह ये बेटा बहुत सुंदर है, लड़की बड़ी सुंदरी रूपवती और गुणवती है, और उसको प्यार करके उसको आशीर्वाद दे दें या उसको गोदी में लेकर के चुंबन करें, उसको आशीर्वाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसको मिठाई दें, मैया और बाप उससे कृतार्थ हो जाए, ये पेड़ों की कृतार्थता से पृथ्वी यहाँ पर कृतार्थ हो गई, ये पृथ्वी जो धन्याय जो प्रसंग उठाया ये अप्रसंगिक नहीं बहुत ही प्रसंग में है, पेड़ों की भी जो प्रशंसा कर रहे हैं, आज पेड़ भी धन्य है, जिस पर बलपन पौगंड अवस्था में पेड़ों पर चढ़ते थे वो भी ऐसे नहीं गोपियों के वस्त्र लेकर के चढ़ रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं किस लिए, बंसी बजाते हैं कदम पटेर पर राधे राधे नाम उच्चारण करते हैं, गायों को पुकारते हैं, कपिला जमुने किशंगी पीताम्बरी भवरी श्यामरी ये सब गायों को जिस तरह पुकारते हैं वो पेड़ धन्य नहीं होगा, पैरों का तो स्पर्श जरूर होंगे किंतु वो पहले में ले आए, दूसरे में कह रहे हैं कर्जा अभिन रिश्ता करों के द्वारा उनका स्पर्श कर, लताएं फूल से भरी हुई है गोवर्धन के निकट से कुसुम सरोवर, तरह तरह के कुसुम फूल खिले हुए हैं, कृष्ण उनको छोड़ राधा जी के राग से अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण उनको खोज रहे हैं, खोजने मिलने पर उन्होंने उनके अपने हाथों से श्रृंगार किया, पीछे की गोपियों ने देखा कि यहाँ पर कुछ फूल गिरे हुए हैं, यहाँ पर फूल कैसे गिरे थे देखा जैसे ये दोनों पैर यहाँ आकर के समाप्त हो गए हैं और ये पैर कुछ कृष्ण का भी कब बच गया है, वो रमणी का पैर दिखना नहीं, उन्होंने अनुमान किया कि उसको ले लिया गोदी ने, खोलकर तो आज देखा यहाँ पर फूल गिरा है, तो उन्होंने देखा जैसे उनका चरण कृष्ण का आधा पंजा से और ऐसे मालवा की चरणों के अग्रभाग में बल देकर के पेड़ की किसी डाल को, लताओं की किसी डाल को उस पचें, क्योंकि ऊपर का फूल तो बाकी है जो सत नहीं कर, नीचे वाला नहीं है। और देखा है यहाँ पर फूल गिरा है, आज यहीं पर श्रृंगार। उस समय में करें उत्प्रेक्षा करके उन लताओं को जिनका फूल चयन कर रहे हैं। फूल तो ऐसे तोड़ा जाता है दोनों हाथों को लेकर, इसलिए मालूम होता है आज लता को अथक प्रेयसी को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे उनको मालूम। क्यों? इसलिए तो उन्होंने ध्रुम और लताओं का जन्म लिया है, इसीलिए ये इसी लाभ के लिए यह हमें लाभ मिलेगा जो हमें स्पर्श कर। प्रिया तो हो नहीं सकता, हमारा सौभाग्य इतना नहीं। यदि गाय बन जाऊं तो कृष्ण अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, लता बन जाऊंगा तो भी उसमें फूल चयन करेंगे, उनके स्पर्श से मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए वहां तो इसमें भी प्रणय रस का को बतला रहे हैं, जैसे हंस से किसी यत्मा को कोई स्पर्श करता है, ऐसे इनको स्पर्श कर रहे हैं। कर्जाभिमृष्टा, बहुत से इसमें श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है सबका, इसको वर्णन के अंतर में इसको ले लोगे कि कैसे स्पर्श करते हैं। गोविंद लीलामृत इत्यादि ग्रंथों में स्पर्श करने का जो है कैसे गोपियों को स्पर्श करते हैं तो पुलकित हो जाती हैं। इसे कृष्ण जब फूल चयन करते हैं तो इनको भी और भी फूल खिल जाते हैं, और भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कर्जाभिमृष्टा नद्यो अत्रय खग मृगा सतयावलोकई अनंत पद स्पर्श का प्राधान्य होने पर भी हाथों से स्पर्श करना भी कम नहीं बल्कि और अधिक है। हाथों से स्पर्श में प्रेम अधिक हो, इसलिए इनका कुछ पृथ्वी से कम नहीं बल्कि कुछ उत्तरोत्तर वर्धित हो रहा है। अनंतर विचित्र मधुर लीला से परायण गाथियों का स्पर्श करते हैं, कितना लोरी उनकी ऐसे संभालते हैं, गाय ऐसे कर देती हैं, उनके पीठ से बछड़ों से गले से लग जाते हैं, ये सब और भी धन्य है। सचराचर गोपों का को तो सौभाग्य का वर्णन बहुत कठिन है, उनका तो ऐसा है खेल में सब समय खाने पीने रहने चलने, पैरों का भी स्पर्श होता है कृष्ण का, कैसे जब वो सखा लोग कृष्ण को वहन करके ले जा रहे हैं खेल में हारने के बाद में, उनके चरणों का भी स्पर्श हो रहा है, हाथों का भी स्पर्श हो रहा है, और कृष्ण उनको जब कि लेकर के जा रहे हैं तो उनके चरण भी कृष्ण से स्पर्श हो रहे हैं, उनका भी हाथों से भी स्पर्श हो रहा है। एक साथ में खाते हैं पीते हैं सोते हैं क्रीड़ा करते हैं, इस तरह से उनका और भी सौभाग्य। पृथ्वी से इतना नहीं बातचीत करना इतना नहीं करते हैं, पेड़ों पर भी पैर रख दिया या उनको स्पर्श कर दिया बस इतना, और इनसे सभी कुछ आदान प्रदान सखाओं से होता है। ये सब पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये पृथ्वी का ही एक तरह से पृथ्वी होता है। बीच में सखाओं का वर्णन नहीं किया, गायों का वर्णन नहीं कर सकते, एकदम आए कहां नद्यो अत्रय खग मृगा सदयावलोक, सदयावलोक मैंने क्या दयालुता पूर्वक देखना सदयावलोक, दया माने प्रेम भी होता है, दया माने प्रेम, कैसे कैसे प्रेम होता है ये कागज इसमें रखा था कहाँ गया, कैसे? अखनतांग फल निदम परम क्या सबका पशुन अनुगत रुपय वक्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनु दुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष जो लोग इसका दर्शन कृष्ण का नहीं किया, जो कृष्ण को उन्होंने एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं बलदेव इत्यादि के साथ में जाते हुए नहीं देखा, विशेष करके पीछे जो जाने वाले हैं बंसी बजाते हुए और जो दया पूर्वक प्रेम पूर्वक जो गोपियों की तरफ में अपने दृष्टि से उनके तरफ में देखते हैं और गोपियां भी अपने नैनों से जिनकी आरती उतारती फुल्लेंदी वरकंत निंद वदनम बरहावतंतम बस्तांक मुदारीताम्बरम सुंदर नैनोत्पलार्पित तनु नैन उत्पल अर्पित नैनोत्पलार्पित तनु गो गो वसंघावृतम गोविंदम कलपेन वादन परम दिव्यंगम गोपियां अपने नैनों से नैन रूपी उत्पल से कमल से उनकी आरती उतार रही है और कृष्ण क्या करते हैं अपनी दृष्टि भर तो से देख रहे हैं। प्रीतम अनुरक्त कटाक्षमोक्षई कृष्ण यहाँ पर दया माने प्रेम प्रेम पूर्वक उनकी तरफ में निहारते हैं। उस निहारने को यदि किसी ने देखा विशेष करके राधिका जी के साथ में कृष्ण को यदि देखा या कृष्ण को देखा जो राधा जी के तरफ में देख रही हैं या कृष्ण उनके तरफ में देख रही हैं जैसे कृष्ण गोचारण को जा रहे हैं जाते 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 नंद बाबा जसोदा जी भी चले जा रहे हैं। जसोदा जी को किसी प्रकार से मनाया बंद दे करके सिर को उनको उलट आया आगे बढ़ने लगे किंतु नंद बाबा माने नहीं हो तो और आगे बढ़े और इतने में कृष्ण ने देखा पास में ही खड़ी गोपियों को विशेष करके राधिका जी बंसी करान निपतितम खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सूण जस्या कटाक्ष सरघात विमुच्छतस्य तं राधिका परिचरामि। उस समय में कृष्ण के हाथों से बंसी गिर गई, उनका पीताम्बर भी गात्र से स्खलित हो गया गिर गया और कृष्ण स्वयं मूर्छित होने लगे तलमल तलमल करने लगे तो श्री दाम मधुमंगल जी ने हाथ से उनको धक्का देकर कहा ये क्या कर रहे हो नंद बाबा यहीं पर खड़े हैं। मंदिर कृष्ण किस प्रकार से होश में आए उस दृश्य को देखो यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं आप उनके तरफ में देख रहे हैं। ये पृथ्वी को आज ही सौभाग्य हुआ इसके पहले नहीं हुआ आज ये भी हुआ उन गोपियों के संपर्क से। खग मृगा अद्र अद्रमाविक पर्वत के लिए हमने बताया पृथ्वी के वक्षस्थल ये गिरिराज जी हैं इसलिए उनका स्पर्श होना पृथ्वी के लिए आज परम सौभाग्य की बात है। कृष्ण का सत्ते सुजात चरणम बरूहम तनेशु भीता स्वनई प्रिय दिदीमहि करकसी तेनाटवीम अटसि तत बथतेन कुंसित कुरुपाद भी भ्रमति फिर औदांगिका। गोपियां जिन चरणों को बड़ी संभाल करके श्री अंगों पर धारण करती हैं और खेद करती हैं और उसको आज गिरिराज के ऊपर में पृथ्वी के ऊपर में रख रहे हैं आज पृथ्वी का कितना धन है। खग मृगा संन्यास मूढ़ मतयो हरण्य एता जा नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रितम सह कृष्ण सारा पूजांग ददो विरचितांग प्रणयावलोक प्रणयावलोक। ये हिरणिया धन्यास मूढ़ होने पर भी आज धन्य है, क्यों? प्रणय पूर्वक कृष्ण के तरफ में अवलोकन करके हुए प्रणय की भिक्षा मांग रहे हैं। किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, राम के अवतार में भी ऐसा नहीं, जो आज ही ऐसा हो रहा है। प्रणय की भीख ये कौन मांग रहा है? हिरणिया मांग रही है, पति उसका पीछे में है, प्रणय पूर्वक कृष्ण के तरफ में देख रही। कृष्ण इनके तरफ में देखते होंगे कि नहीं, कृष्ण सदयावलोक उनके तरफ में दया करके अवलोकन। अच्छा अच्छा ठीक है, अगले जन्म में तुम गोपी के घर में गृह में जन्म लेना है और उस समय में तुमको मैं पूर्ण रूप से मिलूंगा, ये कहेंगे होंगे कि नहीं? या वो नित्य सिद्ध में हरिणी है जो इसी भाव में रहती है और कृष्ण की इसी रूप में सेवा करती है, जिस सेवा को देख करके गोपियां कहती हैं कि मरने के बाद में हम हिरण हों और हिरण होने के बाद में हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, सीधे आपके साथ में हम समय करें। इसलिए ये हिरणियां यथार्थ धन्य है। खग, खग मैंने पक्षी, वो पक्षी धन्य है जो कृष्ण को सदैव उठाता है। सबसे पहले कौन उठाता है? जिसके सिर पर लाल लाल ताम्र पुच्छ, अर्थात वो जो कुक्कुट होता है को को को, ये जो करता है ये धन्य है जो कृष्ण को उठाता है। कृष्ण शयन कर रहे हैं और उठ नहीं रहे, वृंदा जी उसको कहा, इंगित किया, जल्दी से उठाओ। श्रीमती जी कुछ उठ जाती हैं, कहती हैं कि तुम जम के घर में जाकर के शोर करो, यहां मत करो, तुम जमाले में क्यों नहीं जाता, मन मर जा। तब कुछ बंद हो गया का जब ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद में फिर उसने किया, वृंदा जी ने इंगित किया, फिर बोलो। तब वो कहती है, कहती है जिसे ये तो शोर मचाना बंद नहीं कर। इतने में उनकी एक सखी थी, कौन सखी? रमण मंजरी। रमण मंजरी कौन कह, ललिता जी कह रही, जाओ इसको बंद करो कखटी को, ये शोर ना मचाए उसको। इस तरह से ये सब लीलाएं, वो कितना सौभाग्यवान होगी। वो भ्रमर गुंजार जो कर रहे थे फूलों पर, वो कितनी सौभाग्य जी कृष्ण को राधा जी को जगा रहे होंगे। वह विचक्षण सुखों का सरदार, रसिक सुखों में से जो सब दक्ष भी सबसे बड़ा दक्ष, और शुभा ये सब कितनी ये कृष्ण के लिए और राधा जी को जगा रहे हैं। अरे तुम्हारी मैया जग गई तो तू ही आ जाएगी, और कितनी तरह की बातें कर रहे हैं तू, और उनको प्रसन्न करके धीरे धीरे उठा रहे हैं। कितने सौभाग्यवान हूं यदि किसी का ऐसा सौभाग्य हो जो राधा कृष्ण को जगाने के लिए पशु पक्षी भी ऐसे हो जाएं जो मधुर रूप में करते हैं। इतने में कोयल ने कहा कुहू कू, मैंने क्यों सो रही, क्यों सो रही, उठो उठो। और जो कोकुल पुरुष है वो कृष्ण के लिए कर रहे, तुम क्यों नहीं उठ रहे। इतने में मोर ने शोर करना आरंभ कर दिया, काके का उनको उठाने। ये कैसे सौभाग्यवान है खग, राजहंस है वो ऐसे बोलता है मानो राधा कृष्ण के चरण में के नूपुर बज रहे हो, उसके साथ में तुलना किया। इनके चरणों का नूपुर कैसे बजता है, जैसे राजहंसों का वो बोलना है। ये सब पक्षी धन्य है। वो चकवा और चकई धन्य है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में द्वारका में राज महिषियों ने किया, कुररी पक्षी किया दिया। ओ तुम्हें भी अपने पति का वियोग हो गया हमारे जैसे, इसलिए तू विलाप कर रही है। तो ये सब पशु पक्षी कृष्ण के धन्य है। वो बंदर धन्य नहीं होंगे जिनकी पूंछ पकड़ लिया तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं, और कृष्ण भी ऐसे वो उनका पूछ पकड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। सभी जीव जंतु वहां के धन्य है कृष्ण के, विशेष करके वृंदावन के ठग मृगा सदयावल कृष्ण दया पूर्वक उनकी तरफ में देखते हैं। दया मैंने अपनत्व लेकर के देखते हैं उनके तरफ, बड़े प्रेम के साथ में देखते हैं, जिस प्रेम की एक निगाह पर मनुष्य अपना सर्वस्व दे देता है। गोपनियों अपना सर्वस्व और कृष्ण ने अपना सर्वस्व गोपियों को दिया किस लिए? इन कटाक्षों के ऊपर भी सब कुछ उन्होंने अपना दे दिया। सदया बोलो कही एक एक से ऊपर चल रहे हैं। इन खग मृगों से भी अधिक कौन श्रेष्ठ है? गायें धन्य हैं, जिनको चराने के लिए सेवा कृष्ण करने जाते हैं और उनको जिनका स्तनपान करते हैं, पशु पक्षियों का स्तनपान करेंगे। इनके बेटे हो गए, इनके बछड़े बन गए कृष्ण, जिनका दूध पाने के लिए ब्रह्मा जी के यज्ञ इत्यादि में से कुछ भाग नहीं लेना चाहते, उसे अपने को ऋणी कृतार्थ नहीं मानते और इन गोपियों का दूध पीने के लिए मचल उठे। एक नहीं लाखों, इसे भी पेट नहीं भरा तो लाखों गोपियों के बेटे बन गए। इसलिए गायें धन्य, और इन गायों से भी धन्य वो गोपियां जसोदा मातृ स्थानीय, वो धन्य जिनके बेटे होकर के जिनका स्तन पिया, जिनके लाल लड़ाए हुए लड़े, इसलिए वो धन्य है। ये सखा लोग धन्य है, सुदाम सुदाम वसुदाम जो कृष्ण की तरह तरह से सेवा करते हैं, एक हृदय अभिन्न हृदय जो है ये सखा लोग धन्य है। तो इतना श्लोक अंदर में नहीं आया किंतु बीच में ये आ गया, इसलिए उसका भी वर्णन समझ लो। इसलिए अंत में गोप्यो अंतरेण भुजयो की जब इतिहासी, अब इसका वर्णन हम नहीं बैठिए कल करेंगे और अच्छी तरह से, आज यहीं तक रहने दो। वंचा कल्पतरुभ्यश्चा सिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो, इस सबकी चिंतन करना चाहिए, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना भी होनी चाहिए, ऐसी कथाएं सुन सकें, इनका चिंतन करें, ये भक्ति का अंतिम चूड़ान। ये देखो कल मैं राबड़ी था किंतु तुम्हारे जैसे दुर्जन से संग होने से आज मैं चट्टी बना यहां पर पड़ा। कल मैं पूरी पकवान मिठाई था,